SBS हिंदी पर मैं हूं आपके साथ अनीता बरार। जैसा कि विदित ही है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आंतरिक विभाजन, राजनीतिक ध्रुवीकरण और संसद के पंगु हो जाने का हवाला देते हुए अपना त्याग पत्र तो दे ही चुके हैं। ट्रूडो ने कहा कि अवरोध और उत्पादकता की कमी के कारण संसद पूरी तरह से पंगु हो गई है और नेता के रूप में पद छोड़ने से संसद में राजनीतिक ध्रुवीकरण कम हो सकता है और ये कनाडा के लोगों की सेवा पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेगा। अब ये संसद जो 27 जनवरी से खुलने वाली थी वो 24 मार्च तक के लिए रुक गई है। पिछले सप्ताह कनाडा के सेनेटर एंड्रयू कॉर्डर जो हमारे सिडनी स्टूडियो में आए थे और हमारे ALC डायरेक्टर डेविड हुआ ने कनाडा की वर्तमान स्थिति को लेकर उनसे बातचीत की और कई सवाल रहे। अब ये समय है जब अमेरिका और कनाडा दोनों का ही नेतृत्व बदल रहा है। जस्टिन ट्रूडो 9 साल तक कनाडा के प्रधानमंत्री पद को संभाले रहे और वो तब भी प्रधानमंत्री होंगे जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और ट्रंप ने कनाडा की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने वाले टैरिफ की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है वो कनाडा के सभी आयातों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। अब दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही करीब से जुड़ी हुई हैं, वे व्यापारिक साझेदार हैं। इसी संदर्भ में स्थिति क्या है, सेनेटर एंड्रयू कॉर्डोज़ ने बताया।
वी आर ईच अदर्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, सो इट्स नॉट जस्ट कनाडा एक्सपोर्टिंग टू द US, बट इनडीड अ लॉट ऑफ अमेरिकन्स एंड अमेरिकन स्टेट्स, वी आर देयर नंबर वन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। सो इफ दे इम्पोज अ 25% टैरिफ ऑन एवरीथिंग दैट वी एक्सपोर्ट to the U.S., and we impose a similar tariff on everything that's coming from the U.S., I think both economies are going to be hurting. But at this point, we haven't got to that point of the discussion just yet.
अब इस समय ये सभी जानना चाहते हैं कि कनाडा का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। तो सेनेटर ने इस संबंध में कई नामों पर ध्यान दिलाया।
It's hard to say at this point. The contenders would be Mark Carney, who's a former governor of the Bank of Canada and also governor of the Bank of England. So a very smart guy when it comes to economics. He hasn't had any political experience. Our outgoing deputy prime minister, Chrystia Freeland, is another contender. Our industry minister, François-Philippe Champagne, a beautiful French name, which I think some English Canadians don't know how to pronounce yet, is another contender, a very boisterous, high-energy politician, very good with local people, is another contender. So it's hard to say just yet.
अब कनाडा में तो बड़ी फ्रेंच भाषी आबादी है, तो वहाँ पर बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय नीतियाँ क्या हैं और कनाडा में ये स्थिति कितनी स्वीकार्य है? ऐसे ही एक सवाल पर सेनेटर का कहना था कि चाहे वहाँ ऑस्ट्रेलिया के SBS की तरह सेवाएं तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुजातीय समाजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।
What you do here is wonderful in terms of involving and catering to a multilingual society. I will just tell you that I think we are more multilingual than you are in Australia, but we don't have an SBS. We have a lot of private sector broadcasters who broadcast in a number of languages. So I'm really interested to see and hear and learn more about what SBS is doing. And I think you are a really good example to the world, and certainly an example that we should be looking at in Canada.
अब ये बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय समाज किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए ताकत होता है, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है और शायद इसीलिए सेनेटर ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि अब ये सोचना होगा कि कनाडा की विविधता उसको कहाँ ले जा रही है। इस संबंध में रुक कर विचार करना होगा ताकि देश का तारतम्य बना रहे।
We've seen acceptance of our diversity grow over the past sort of five or seven decades. But my concern is there's a bit of pushback happening in the last 3 to 5 years. So I think this is really a time for us to stop and think about where we're going in terms of diversity. So it's a time to stop and think about how we understand our national identity in this changing world and understand that our two countries are really at the front edge of a multicultural, multiracial, multilingual society.
एक ये भी सवाल रहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री अमेरिका के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं और कनाडा की 5-13% आबादी अमेरिका में शामिल होना चाहती है तो ये भविष्य कैसा होगा तो उनका कहना था कि इस तरह की विचारधारा होती ही है ऐसे उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी कि क्यों ना अमेरिका कनाडा में शामिल हो जाए उनका मकसद था कि दोनों ही देशों में बहुत अधिक अंतर है विचारधाराओं में अंतर है और उन्हें लगता है कि ये बात खत्म हो जाएगी
आई थिंक देयर विल बी अ पुशबैक देयर इज ऑलवेज अ बेस इन कनाडा पीपल हु वुड लाइक टू जॉइन द यूनाइटेड स्टेट्स इंटरेस्टिंग आई डू अ फेयर अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया आई पुट आउट अ पोस्ट अबाउट 2 वीक्स अगो सेइंग रादर देन वी बिकमिंग द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वी शुड इनवाइट अमेरिका टू बिकम द 11th प्रोविंस ऑफ कनाडा एंड आई आउटलाइन व्हाट दैट मींस एंड हाउ वी डिफरेंट from the United States. And I have gotten more commentary on that than anything else I've posted. So I think people are, and I posted it as a sense of, let's have a discussion. So how are we different? Well, we have two languages. We have an open immigration system. We respect indigenous reconciliation. We have legalized marijuana. We have a CBC, a broadcaster. And people are suddenly thinking, yeah, well, some of these things we like and some of them we don't like. So I think in the best case scenario, we're entering very fast a really interesting debate about who we are as a country. But at the same time, it's under a bit of a cloud of discussion.
ऐसे बहुत से कई सवाल इस समय वैश्विक स्तर पर खड़े हुए हैं कनाडा के राजनीतिक भविष्य को लेकर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या कनाडा की घरेलू स्थिति हो अब ये तो आगे आने वाला समय ही तय करेगा कि स्थिति क्या बनती है